नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
The United Kingdom Free Trade Agreement has...
भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
And together becoming a force multiplier.
श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
Partnership with UK is taking many more dimensions.
ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधा कृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।